हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनाही मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश करते हुए वापस अपने कमरे में जा चुकी थी, तो वहीं रुहान बस अपने खाली हाथों की तरफ देख रहा था। उसे एक बात नहीं समझ आ रही थी, शादी के वक्त वही तो चाहता था अनाही उसकी बुरी से बुरी साइड देखे और उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन जब अब एक्चुअल में ये सब हो रहा है तो उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा है? रुहान में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस घर के अंदर जाए और अनाही का सामना करे, इसलिए वो वहीं से वापस मुड़ गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए घर से चला गया। वहीं वेहा और वेदांत इस वक्त एक गार्डन में मौजूद थे। के बीच खुशी वाला माहौल होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वहाँ सिर्फ उदासी छाई थी। वेहा मुंह फुलाए बैठी थी और वेदांत उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वेहा को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो वेदांत की बात से सहमत हो जाएगी। वेहा ने लगभग रोते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे मम्मी पापा से मिलना है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज बस दो दिन के लिए ही सही मुझे मम्मी से मिलने दो। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है तुम रोना बंद करो, मैं ड्राइवर बुलाता हूँ, मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा, प्लीज चुप हो जाओ। गार्डन में मौजूद बाकी लोग वेदांत और वेहा को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्होंने ये अजीब से कपल अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखे हों। वेदांत ने अपना माथा पीटा और फिर जल्दी से वेहा का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरते हुए धीरे से बोला, ठीक है रोना बंद करो, मैं चल रहा हूँ साथ, एक बार घर पर इन्फॉर्म कर दो उसके बाद हम चलेंगे, प्लीज डोंट क्राई। इतना बोलकर इस बार उसने आहिस्ता से वेहा को अपनी बाहों में भर लिया और वेहा भी सुबकते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर धीरे से बोली, हाँ मैं भी तो पिछले 5 दिन से ससुराल रह रही हूँ, 2 दिन आप अपने ससुराल रहकर आ जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वेदांत ने गहरी सांस लेकर बस हाँ में जवाब दिया और फिर घर पर निवेदिता को कॉल करके बताया कि वो वेहा के साथ सिरोही जा रहा है क्योंकि वेहा का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। निवेदिता ने भी उसे जाने की मंजूरी दे दी थी क्योंकि वेहा का बचपन वो पहले ही देख चुकी थी, उन्हें पता है वेहा कितनी जिद्दी है। रात के करीब 10 बजे थे जब अनाही दवाई लेकर बालकनी में टहल रही थी क्योंकि रुहान शाम को गया था लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटा था। अनाही को टेंशन हो रही थी, कहीं आज उसने रुहान को ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं उसके वजह से रुहान ने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, और भी बुरे बुरे ख्याल अनाही के दिल में चल रहे थे। वो अपने निचले होंठ को काटते हुए सोच रही थी कि आज रुहान के आने पर उसे समझाएं कि उन दोनों के रिश्ते में अभी इतनी ज्यादा दूरियां हैं कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सोचने पर अनाही को समझ आया था कि जब वो गिर रही थी उस वक्त रुहान ने उसे संभाला और उसके बाद उसने बस एक छोटा सा मजाक किया था कि उसके हाथों को उसे छूने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अनाही ने उसे बात को सीरियसली लेकर रुहान को बहुत ज्यादा सुना दिया। अनाही के घूमते घूमते पांव दर्द करने लगे थे, वो सोफे पर बैठी और सामने दरवाजे की तरफ देखने लगी और खुशी पल में जैसे भगवान ने भी उसकी सुन ली थी, भगवान की बारत कर आकर घर के मेन दरवाजे पर रुकी। रुहान उतरा और उसने अपने कम जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ाए वो लड़खड़ा गया और अनाही की आंखें फैल गईं। उसे पता चल गया आज भी उसका पति पीकर घर आया है। वो तुरंत ही अपने थके कदमों से ही उठी और दौड़ते हुए कमरे से बाहर गई। हाल में इस वक्त कोई नहीं था, सब लोग सो चुके थे। अनाही बस आखिरी सीढ़ी उतरने वाली थी तब तक रुहान घर के अंदर इंटर हो चुका था और अनाही के कदम वहीं रख चुके थे। रुहान उसे एक तक देखते हुए अवधि में कदमों से आगे बढ़ रहा था। एक बार वो टेबल से टकराते टकराते बचा और फिर अनाही के पास आकर उसकी खूबसूरत भूरी आंखों को देखते हुए बोला, मैडम जी आप सोई नहीं? अनाही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने रुहान का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो रुहान 2 कदम पीछे हट गया और अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, ना ऐसी गलती मत करो, आज ही तो कितनी मुश्किल से मैं खुद को समझाया था कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ, अगर मैं आपको गिरने से नहीं बचा सकता हूँ तो आप भी मुझे नहीं बचा सकते हैं। अनाही ने अपने सुख के गले को उतारते हुए धीरे से कहा, भगवान जी हम कमरे में चलकर बात करें। रुहान ने फीके पान से मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं आपसे बात करने के लिए तलबगार था तब आपके पास वक्त नहीं था, और अब जब आपका मन हो रहा है तो क्या मुझे आपके साथ चलना चाहिए या फिर मुझसे बदला लेना चाहिए कि आपने बात नहीं की तो अब मैं भी नहीं करूंगा। बनाही ने उसके बात सुनकर गहरी सांस ली और फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, मैंने कहा ना, हम रूम में जाकर बात करेंगे, जो भी बात करनी है। रूहान ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी जिद्दी हैं आप, आज तक मैं किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन आपकी बात सुनाई पड़ती है। पहले बस सुना था कि शादी होते ही एक पति अपनी पत्नी का गुलाम बन जाता है, लेकिन अब तो लाइव डेमो देखकर लग रहा है हाँ, वो काफी सही कहावत है। रूहान की आवाज नशे में होने के कारण लड़खड़ा रही थी। वहीं माही को अफसोस हो रहा था अपने बिहेवियर पर। माना वो बीमार थी, ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन रूहान पर बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसका नतीजा उसके लिए सह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में मौजूद थे। रूहान को बेड पर बैठाया और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, मैं आता हूँ थोड़ी देर में आपके लिए खाना लेकर, तब तक यादव आप फ्रेश हो जाएंगे या फिर यहीं बैठे रहिए, सोना मत, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई धमकी नहीं दे रही हूँ। रूहान ने एक ट्रक उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा, क्या आपने खाना खा लिया मैडम जी? अनाही ने गहरी सांस लेकर नामे गर्दन हिलाई और फिर कमरे से बाहर चली गई। वहीं रूहान अब अपने चेहरे को छूकर देख रहा था, जिसे कुछ देर पहले अनाही ने अपने मुलायम हाथों में भर रखा था। रूहान के लिए उसका ये टच बहुत ज्यादा प्रेशियस था। ऐसा मोमेंट उसके लाइफ में शायद पहली बार आया था जब किसी लड़की ने इतने प्यार से उसके चेहरे को थामा था। वहीं अनाही किचन में खाना गर्म कर रही थी और साथ ही साथ रूहान और अपने रिश्ते के बारे में ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अनाही ने प्लेट हाथों में लेकर किचन से निकलते हुए धीरे से फुसफुस कर कहा, जितना आसान मुझे ये सब झेलना लग रहा था उतना है नहीं। सही कहते हैं, शादी वाली जिंदगी बाहर से ही खूबसूरत लगती है, अंदर से उसमें ऐसे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं जिनका सामना आप चाह कर भी शांति से नहीं कर सकते। वो रूम में गई और फिर देखा तो रूहान आज सोया नहीं था तो उसका इंतजार कर रहा था। अनाही के आते ही हीरोइन जैसे ही बेड से उठने को हुआ, नहीं नहीं, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस बेड पर बैठाते हुए कहा, यहीं बैठो मैं खिलाती हूँ। नहीं, मन ही मन सोच रही थी शायद नशे में ही सही रूहान अपने मन की बात सच सच उसे बता देगा, क्योंकि होश में होने पर तो वो बस बाहर से अकड़ू होने का नाटक करते रह जाता है, उसके दिल में क्या है वो कभी अनाही को पता ही नहीं चल पाता। अनाही ने उसे एक निवाला खिलाकर प्यार से पूछा, रूहान जी आपसे एक बात पूछूं, प्लीज सच सच बताना। रूहान ने अपनी नशीली आंखों की बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, पूछिए। ए मैडम जी, क्या पूछना, आपको बिल्कुल एकदम सच सच बताऊंगा,
उसने अपने गले को अपनी चुटकी में भरते हुए कहा। रूहान के जवाब में मासूमियत लिपटी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि रूहान अल्लाह ही को सब सच सच ही बताने वाला है।